हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह विधिक आंशी को लेकर इंडिया जाने वाला था ताकि वो वहां जाकर आंशी के हिसाब से उससे शादी कर ले। आंशी सोने जा चुकी थी जबकि विधिक पैकिंग करने में लगा था। पैकिंग करने के बाद जब वो बाथरूम में गया और उसने वहां डस्टबिन रखा देखा तो विधिक उसे बाहर लेकर आ रहा था। किसी चीज से टकराने की वजह से उसके हाथ से डस्टबिन नीचे गिर गया और उसके कचरे में उसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाई दी। विधिक जानता था ये किसकी हो सकती है, फिर भी कन्फर्म करने के लिए विधिक ने फुटेज देखी तो आंशी के अलावा उस रूम के बाथरूम को किसी ने यूज नहीं किया था। विधिक इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका मन कर रहा था वो अभी इंडिया जाकर अमन की जान ले ले। उसने फिर भी आंशी को कुछ नहीं कहा और अपने ऑफिस एरिया में गया। वो एक साउंड प्रूफ रूम था इसलिए वहां आते ही विधिक जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू थे। विधिक रोते हुए चिल्लाकर बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बटरफ्लाई को छूने की? उसने उसे टच किया, मेरी बटरफ्लाई को, सब जगह टच किया, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने जबरदस्ती की होगी, वरना मेरी बटरफ्लाई ऐसी नहीं है। बोलते हुए विधिक कमरे का सारा सामान उठाकर फेंक रहा था। कुछ देर में उसने पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया था। विधिक के हाथ में अभी भी वो टूटा हुआ प्रेगनेंसी किट था और वो रोई जा रहा था। आंशी के जाने पर भी विधिक की ये हालत नहीं हुई थी जितना आज उसके प्रेग्नेंट होने की बात पता चलने पर हुई थी। नहीं, तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती हो बटरफ्लाई, तो तुम क्या यहां मेरी जासूसी करने के लिए आई थी? मैंने तुम्हें कहा था मुझे धोखा मत देना, फिर भी तुमने दिया। अगर पूरे दिल से मेरे साथ आती तो सच बताकर आती। जानता हूं मुझे गुस्सा आता, मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता था, लेकिन बाद में प्यार से समझाती तो समझ भी जाता। ये तुमने क्या कर दिया बटरफ्लाई, तुमने मेरी दुनिया खत्म कर दी, विधिक खुद से बोला। वो पूरी रात वहीं पर बैठकर रोता रहा। उनकी फ्लाइट अगली सुबह 8 बजे तक की थी। 7 बजे तक आंशी और हरलीन दोनों तैयार हो चुकी थी लेकिन उन्हें विधिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हरलीन ने एक आंशी से हैरानी से पूछा, तुमने विधिक को कहीं देखा? मैंने सुबह से उसे नहीं देखा, रात को भी बात करने आता है पर कल रात नहीं आया था। वो मेरे रूम में पैकिंग कर रहा था, सामान पैक किया हुआ है पर विधिक कहीं पर नहीं दिख रहा, हो सकता है किसी काम से बाहर गया होगा, आप कॉल करके देख लीजिए, आंशी ने जवाब दिया। इस तरह एन मोमेंट पर विधिक के गायब होने पर आंशी परेशान हो गई, साथ ही उसे डर भी लग रहा था। हाँ, मैं कॉल करके देखती हूँ, शायद यहीं कहीं होगा, तुम परेशान मत हो, हरलीन ने आंशी का कंधा सहलाकर कहा और फिर विधिक को कॉल करने लगी। हरलीन ने जब विधिक को कॉल मिलाया तो उन्होंने देखा विधिक सामने से ही चलकर आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसे इस हाल में देखकर आंशी और हरलीन दोनों ही घबरा गईं। हरलीन जल्दी से विधिक के पास गई और उससे पूछा, सब ठीक है ना विधिक, तुम परेशान लग रहे हो, याद है ना हम आज इंडिया जाने वाले थे? कोई कहीं नहीं जाएगा बुआ, विधिक सर्द आवाज में बोला। बोलते हुए उसने आंशी की तरफ देखा और फिर वो उसके पास गया। विधिक जिस हिसाब से बात कर रहा था और जिस तरह उसके पास चलकर आ रहा था, आंशी के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे डर लग रहा था विधिक उन्हें सुन ना ले। विधिक आंशी के पास आया और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ बटरफ्लाई, डर लग रहा है मुझे इस हाल में देखकर, लगना भी चाहिए? आंशी कुछ पूछ पाती उससे पहले विधिक ने उसका गला पकड़ लिया। आंशी की आंखों में आंसू थे और वो डर से कांप रही थी। हरलीन जल्दी से विधिक के पास आई और उसका हाथ आंशी के गले से अलग करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो विधिक, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, गुस्से के बजाय प्यार से बात करना सीखो, तुम दोनों में किसी चीज को लेकर बहस हुई है तो प्यार से बात करके सॉल्व करो। हरलीन के कहने पर विधिक ने एक झटके में आंशी का गला छोड़ दिया, इससे वो 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। अब प्यार से बात करने का टाइम नहीं रहा है बुआ, क्योंकि प्यार ही कहाँ रहा है, विधिक ने जवाब दिया। बोलते हुए उसने टूटी हुई प्रेगनेंसी किट ऊपर की। हरलीन उसे देखकर समझ गई थी कि आंशी ने उसे झूठ बोला है। वहीं आंशी की आंखों में आंसू थे और उसे इस वक्त विधिक से उतना ही डर लग रहा था जब पहली बार विधिक की सच्चाई सामने आने पर लगा था। विधिक आंशी के पास आया और पीछे से उसके गर्दन पकड़कर अपने करीब खींच लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बटरफ्लाई मुझे धोखा देने की, जबकि मैंने साफ मना किया था कि तुम मेरे अलावा किसी को अपने करीब नहीं आने दोगी। उसने तुम्हें छुआ, हर तरह से महसूस किया कि आज तुम उसकी निशानी अपने पेट में पाल रही हो। आंशी अटकते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज प्लीज विधिक जाने दो, धोखा नहीं दिया मुझे, मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैं प्लीज विधिक जाने दो। विधिक और आंशी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां विधिक की आंखों में गुस्सा था वहीं आंशी की आंखों में डर था। हरलीन जल्दी से उनके पास आई और विधिक को आंशी से अलग किया। वो विधिक से बोली, बैठकर बात करते हैं विधिक, इस तरह सोल्यूशन नहीं निकलना है, और तुम मानसी को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हम अभी इंडिया जा रहे हैं और इसके हस्बैंड से बात करेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा और ना ही कोई बात होगी। ये लड़की अपने कमरे से कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। कल डॉक्टर यहाँ आएगी और इसे ऑपरेट करेगा, विधिक गुस्से में चिल्लाकर बोला। उसने आंशी का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाने लगा। आंशी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो विधिक से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज विधिक, ऐसा मत करो, मुझे अमन के पास जाना है। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगी। मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी, तुम मेरे पास भी आ जाना, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना। विधिक ने आंशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। वहीं हरलीन अभी भी नीचे थी और विधिक के आने का इंतजार कर रही थी। ये तुमने क्या कर दिया आंशी, मैंने तुम्हें पहले ही मेडिसिन दी थी और साफ समझाया था कि विधिक को इसका पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो, हरलीन ने खुद से कहा। वो आंशी की मदद करना चाहती थी, लेकिन आंशी के झूठ बोलने की वजह से सब गड़बड़ हो गया था।